रविवार 5 जून दिन भर के साथ मैं निखिल रंजन। विदेश दौरे के दूसरे दिन कतर में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कारोबारियों को भारत आने का दिया न्योता, दोनों देशों में कई अहम करार। मथुरा के जवाहर बाग को पुलिस ने मीडिया के लिए खोला, लेकिन बीजेपी नेताओं को जाने से रोका। दक्षिण चीन सागर में गतिविधियों पर अमरीका ने दी चेतावनी, तो चीन ने कहा परवाह नहीं करते। संडे दिनभर में आज करिएगा खास मुलाकात अक्षय कुमार से। क्या हिंदी फिल्मों को हिट कराने का कोई फॉर्मूला होता है?
कुछ नहीं कह सकते, किसी के बाप में दम नहीं है ये बोल दे कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, ये किसी के बाप में दम नहीं है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान कतर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया और स्थानीय कारोबारियों को भारत आने का न्योता भी दिया। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक ईसाई दुकानदार की हत्या कर दी गई है। चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस हत्या को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं और ब्लॉगरों की हो रही हत्याओं के सिलसिले में ही अगली कड़ी माना जा रहा है। इससे कुछ ही घंटे पहले संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों ने दक्षिण पूर्वी शहर चटगांव की एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या कर दी। महमूदा बेगम अपने बेटे को स्कूली बस में बिठाने जा रही थीं जब उन पर हमला किया गया। उनके पति बाबुल अख्तर ने इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ कई चर्चित अभियानों का नेतृत्व किया था। चटगांव के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इकबाल बहार ने बताया,
এটা আসলে উনি বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলের বাসে উঠিয়ে দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন। এটা 6:35
वो सुबह अपने अपार्टमेंट से अपने बेटे को स्कूल की बस में बिठाने के लिए निकली थी। अचानक 3 मोटरसाइकिल सवार उनके करीब आए। पहले उन्होंने उन पर चाकू से हमला किया और फिर गोली चलाई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और हमें उम्मीद है कि हम हमलावरों को जल्द ही पकड़ लेंगे। ये थे चटगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इकबाल बहार के शब्द। पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का अभियान छलावा है। जॉन मेजर ने बीबीसी से कहा कि यूरोपीय यूनियन के बिना ब्रिटेन को हर सप्ताह 35 लाख पाउंड का फायदा होगा जैसे दावे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी महीने ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो या इसके साथ रहे, इस मुद्दे पर ब्रिटेन में जनमत संग्रह होना है। यूरोपीय संघ समर्थक और विरोधी अपने अपने तर्कों से जमकर प्रचार कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की मदद करने वाली स्वीडन की महिला को संत घोषित किया गया है। ये बीते 600 साल में पहली बार है जब किसी स्वीडन के व्यक्ति को संत घोषित किया गया है। एलिजाबेथ हेजलब्लाड ने रोम के रोमन कैथोलिक कॉन्वेंट में अपनी जान बचाकर भाग रहे दर्जनों यहूदियों को छुपाया था। वो उस समय वहाँ मदर सुपीरियर के तौर पर कार्य कर रही थीं। माना जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में लोगों को बिना शर्त महीनावार भत्ता देने को लेकर हुए जनमत संग्रह में लोगों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 75% से अधिक लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस अभियान के समर्थक चाहते थे कि स्विट्जरलैंड के प्रत्येक वयस्क नागरिक को हर महीने $2,500 भत्ते के तौर पर बिना शर्त दिए जाएं। उनका कहना था कि इस कदम से गरीबी खत्म हो जाएगी, जबकि विरोधियों का तर्क था कि इससे लोग काम करना ही बंद कर देंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के दूसरे दिन कतर में हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते हुए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कतर में रहने वाले भारत के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुने क्या कहते हैं वो।
अब उनको सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए रसोई गैस। आप लोगों को मालूम होगा हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग पूछते थे, आप किसी नेता की पहचान है क्या, किसी से परिचय है क्या, जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को अप्लाई।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा में भारतवंशियों को संबोधित कर रहे हैं, और इस दौरान वो, जैसा कि आपने सुना, इस देश में किए अपने कामों के बारे में बता रहे थे। भारत और कतर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, कि 7 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौते के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अमर सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी।
Both sides felt that time has come that we need to move beyond a trading relationship, get into strategic investments.
दोनों देशों को लगता है कि अब समय आ गया है कि व्यापारिक संबंधों से आगे जाकर रणनीतिक निवेश की ओर बढ़ना चाहिए। कई व्यावसायिक मुद्दों पर आपस में चर्चा हुई। हमारे नज़रिए से प्रधानमंत्री ने जिन प्रमुख मुद्दों के बारे में बात की, उनमें रेलवे, कृषि, प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण और सामान्य निर्माण के क्षेत्र शामिल थे। इन सब के अलावा भारत में मौजूद अनेक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मिसाल के तौर पर, जैसे रेलवे के क्षेत्र में हम मसाला बॉन्ड लेकर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कतर दौरे पर क्या कुछ हुआ, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मैंने दोहा में गल्फ टाइम से जुड़े पत्रकार पी वेंकटचलम से बात की और पूछा कि आज क्या कुछ हुआ वहाँ।
आज सुबह वो कतर के अमीर समीम बिन हमद अल थानी से उनकी मुलाकात हुई। अमीरी दीवान, उनका स्वागत हुआ वहाँ पे अरब कल्चर के मुताबिक, और उनकी जो डेलीगेशन है उनका भी स्वागत हुआ। उनके बीच वहाँ पे बातचीत हुए। महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंडिया और कतर 7 एग्रीमेंट्स साइन किए। दिस वाज विटनेस्ड बाय नरेंद्र मोदी एंड कतर समीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट के तहत कतर विल इन्वेस्ट इन इंडियाज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और दूसरा जो MOU साइन किया हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद कतर्स नेशनल क्वालिफिकेशन अथॉरिटी एंड सुप्रीम एजुकेशन काउंसिल। दिस इज टू डू विद कोऑपरेशन इन स्किल डेवलपमेंट। और तीसरा जो है वो है फॉर कोऑपरेशन इन टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। और चौथा जो है वो है कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कतर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर टू डू विद फाइनेंस इंटेलिजेंस unit of India and Qatar's finance information unit. They have signed an agreement also for mutual assistance in customs matters. Apart from this, in the field of youth and sports also the two countries have signed an agreement. Aur agreement signing ke baad hamare pradhan mantri shri narendra modi qatar ke jo business community leaders hain unke sath unki mulaqat hui. Unhone qatar ke business leaders hain unko india aane ke liye daawat di unhone and invited them to visit and also invest in india.
Qatar mein sarkar ke star par modi ke daure ko lekar ke kitna utsah dikha hai aapko?
Main ye keh sakta hu ki it has been extremely positive. Like yesterday to receive him, earlier one news story said that, which was put out by Qatar news agency, said that the finance minister of Qatar will go to receive him. And later it turned out that the prime minister of Qatar himself had gone to the airport to receive Shri Narendra Modi. So ye to bahut hi mahatvapurna hai. I don't know whether it was a break of protocol or what, but it surprised us. Qatar aur Hindustan ki jo talukat hai, relationship hai, wo more than 200 years old hai. And historic hai. And this comes after Qatar Sheikh, the ruler, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, he visited India on March 2015, pichle saal. And Shri Narendra Modi's visit is reciprocated to that. Iske pehle Shri Manmohan Singh, hamare jo Pradhan Mantri rahe, wo 2008 mein Qatar ka unka dauran hua. And jo Indian community jo hai yahan pe, wo यहाँ पे इट इज द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स इन कतर। करीबन 630,000 एक्सपैट्रिएट इंडियंस कतर को अपना सेकंड होम मानते हैं। तो यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है, इट इज एक्सट्रीमली वाइब्रेंट एंड प्रोडक्टिव एंड दे आर द रियल एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री।
तो क्या भारतीय जो लोग हैं वहाँ पर, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है?
जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी कल जून 4 तारीख को यहाँ पे आए, और आते ही उनकी स्वागत, जैसे मैंने कहा, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने किया, और वो सीधा कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के बाद वो एक हेल्थ कैंप गए वहाँ पे इंडियन वर्कर्स को मिलने, और उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उनकी जो तकलीफें हैं या जो शिकायतें हैं या कुछ उनसे मालूम करने की कोशिश की उन्होंने, और फिर उनसे ये भी कहा कि जो यहाँ पे हैं दे शुड वर्क एंड एट द सेम टाइम दे शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ, एंड उनके साथ उन्होंने खाना भी खाया, और आज शाम को वो इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यह है कि अभी जो करीब आधे घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कतर के पूर्व एमिर से मिले।
दोहा में गल्फ टाइम से जुड़े पत्रकार पी वेंकटचलम से ये बातचीत मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि प्रधानमंत्री के कतर दौरे पर क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए। इधर रुख करते हैं वापस भारत का। मथुरा में आज जवाहर पार्क जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी के नेताओं की एक टीम वहां हालात का जायजा लेने गई थी। हालांकि पुलिस ने पत्रकारों के एक दल को वहां ले जाकर दिखाया है कि जवाहर पार्क में किस तरह से आंदोलनकारियों ने अड्डा जमा रखा था। आपको पता है कि इनके गुट के जो नेता हैं राम वृक्ष, उनकी मौत की खबर कल आई थी। पत्रकारों ने वहां पार्क में क्या कुछ देखा और मथुरा में इस वक्त की ताज़ा जानकारी क्या है, उनके हालात कैसे हैं, इसके लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। समीर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि आज क्या कुछ हुआ है मथुरा में पत्रकार जब वहाँ गए देखने तो।
जी निखिल, जैसा अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के दल को, जो 7 सदस्यीय दल था, उसको पुलिस ने रोका। तो पुलिस का ये कहना है कि 12 बजे के बाद उसको खोला गया जवाहर बाग को, और उसके पहले सभी के लिए बंद था, और 12 बजे के बाद कोई भी जाता तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा भी कि अगर आप अब जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो लेकिन 12 बजे से पहले वो सभी के लिए रोक थी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी रोक थी। उसके बाद उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी और कई पत्रकारों ने देखी जो वहां पे गए थे। उन लोगों ने मुझसे बताया कि किस तरह से वहां चीजें रखी हुई थी तमाम तरह की, और गैस सिलेंडर रखे हुए थे, बहुत सारी चीजें जो जली हुई अवस्था में दिखाई पड़ी। कुछ एक किताबें भी मिली हैं जिसको कि इनका जो संगठन था स्वाधीन भारत विधिक संगठन, उससे जुड़ी हुई, उससे कुछ लिटरेचर मिले हुए हैं, तो लोगों ने देखा। और उसके अलावा जो जांच सौंपी गई थी अलीगढ़ के कमिश्नर को चंद्रकांत को, उन्होंने भी आज कई लोगों के बयान रिकॉर्ड किए, लोगों से बातचीत की, और 15 दिन के भीतर, उनका कहना है कि 15 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट सौंपने की कोशिश करेंगे। इस बीच आप ये भी देख रहे हैं कि उसको लेके और जो बयानबाजी है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, वो तेज होती जा रही है, और लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप देने से पूरी कोशिश में लगी हुई है। आज उनका वहां जाने का कार्यक्रम था जो नहीं पूरा हुआ। सोमवार को यानी कल वो पूरे प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी जगहों पे प्रदर्शन करने की योजना बनाए हुए हैं। तो कल भी उनका ये मथुरा कांड को लेकर के कुछ न कुछ होगा।
समीर, क्या बाद में 12 बजे के बाद जो है ये बीजेपी के नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की या वो गए?
नहीं, उसके बाद तो खबर नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मेरी वहां के एक पत्रकार से बात हुई और उनका कहना था कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रतिनिधिमंडल वहां गया दोबारा, और शायद वो लौट भी गया है। हालांकि इसकी पुष्टि मेरे पास अभी नहीं हुई है। लेकिन
वहां शहर के हालात इस वक्त कैसे हैं, संक्षेप में बताइएगा, समय थोड़ा कम है।
जी हाँ, शहर के हालात तो बिल्कुल सामान्य है। शहर में कोई ऐसी उसको लेकर के कोई बहुत क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जवाहर बाग के आसपास जो है, जो कि पूरा मीडिया भी इस समय लगा हुआ है, सभी चैनलों के लोग, अखबारों के लोग बाग के अंदर का मुआयना कर रहे हैं। लगभग 300 एकड़ की बाग है, और पूरे में राम वृक्ष यादव और उनके सहयोगियों का जो उनका साम्राज्य फैला हुआ था, तो पूरा उसको देखने में भी समय लग रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे पूरी भीड़ है। लेकिन
हम समीर आपके पास हम अपने दूसरे कार्यक्रम में भी आएंगे, तब शायद आप और ज्यादा हमें जानकारी दे पाए इस बारे में। इस वक्त समय हो चुका है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ, और अब आइए एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर ठनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने चीन को चेतावनी दी है कि दक्षिण चीन सागर में अगर चीन हवाई सुरक्षा जोन स्थापित करता है तो ये उकसाने वाला कदम होगा जिससे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। मंगोलिया की यात्रा पर गए जॉन कैरी ने ये बातें पत्रकारों से कही। उधर दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन अपनी दावेदारी करता रहा है और उसने अमेरिका की आलोचना को खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि उसे किसी संकट से डर नहीं लगता, ना ही वो उनकी परवाह करता है। ब्यौरा बीबीसी संवाददाताओं ने भेजा है, आपको सुनाएंगे अमर शर्मा।
विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार जताता है, जबकि ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे कई देशों के वहां अपने दावे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी मंगोलिया के दौरे पर थे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चीन को चेतावनी दे डाली। कैरी ने कहा कि विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में हवाई सुरक्षा जोन बनाना एक उकसाने वाला कदम होगा, जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो सकती है और चीन का ऐसा कोई भी फैसला पूरे इलाके को अस्थिर बना देगा। कैरी ने आगाह किया कि चीन के हवाई सुरक्षा जोन बनाने से चीन और अन्य एशियाई देशों के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है।
We would consider an ADIZ, an ADIZ zone over portions of the South China Sea.
हम दक्षिणी चीन सागर के कई हिस्सों पर वायु सुरक्षा क्षेत्र बनाने को एक उकसाने वाले और अस्थिर करने वाले कार्य के तौर पर देखेंगे, जिससे खुद ब खुद तनाव बढ़ेगा। साथ ही दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रीय विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की चीन की प्रतिबद्धता पर कई गंभीर सवाल खड़े करेगा।
हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार बढ़ती सैन्य उपस्थिति से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। चीन की सेना के एक प्रवक्ता एडमिरल सुन जियानगुओ ने अमेरिका की आलोचना को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें किसी संकट का डर नहीं।
हम कोई मुसीबत पैदा नहीं करते, लेकिन हमें किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। चीन किसी भी असर से प्रभावित नहीं होगा, ना ही वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर किसी को अतिक्रमण करने देगा। दक्षिण चीन सागर में अराजकता फैलाने वाले किसी भी देश को अनदेखा नहीं करेगा।
चीन ने पिछले कुछ समय से द्वीपों के निर्माण और उनमें हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू किया है। इसके बाद से हाल के महीनों में अमरीका ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को समर्थन बढ़ा दिया है। अमरीका का कहना है कि चीन ने स्पार्टली द्वीप समूह में 810 हेक्टेयर जमीन रिक्लेम की है। रिक्लेम का मतलब सागर में कृत्रिम रूप से जमीन तैयार करना है। अमेरिका ने चीन पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इन पर लगाम लगाने को कहा है, लेकिन चीन ने इन निर्माणों को नागरिक उद्देश्य बताते हुए इन्हें जारी रखने की बात कही है। अप्रैल के महीने में दक्षिणी चीन सागर में अमरीका ने फिलीपींस के साथ साझा निगरानी शुरू कर दी। साथ ही अमरीकी रक्षा अधिकारियों ने ऐलान किया कि वो फिलीपींस को सैन्य मदद के लिए $4 करोड़ की राशि भेजेंगे, जिससे फिलीपींस अपनी खुफिया आदान प्रदान निगरानी और नौसैनिक निगरानी बढ़ा सके।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। और इस वक्त रोला गैरा पे जो है जोकोविच और एंडी मरे के बीच फ्रेंच ओपन के खिताबी मुकाबले में भिड़ंत हो रही है। आदेश कुमार गुप्त हमारे साथ हैं, बताइए आदेश जी क्या हो रहा है इस वक्त मुकाबले
जी? देखिए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय सेकंड सेट चल रहा है और अगर पहले सेट की बात की जाए तो एंडी मरे ने 6-3 से ये मुकाबला अपने नाम किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वो नया चैंपियन बनेगा फ्रेंच ओपन का। जोकोविच अगर जीतते हैं तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि इससे उनका करियर ग्रैंड स्लैम पूरा होगा। वो इससे पहले कभी भी फ्रेंच ओपन नहीं जीत सके हैं। दूसरी तरफ अगर एंडी मरे की बात की जाए तो 79 साल के इतिहास में ब्रिटेन का कोई खिलाड़ी अब जाकर फाइनल में पहुंचा है और 81 साल से खिताबी जीत नहीं मिली है, तो इंतज़ार करना होगा। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज मलेशिया के ली चोंग वेई ने जीता और महिला एकल वर्ग का खिताब चीन ताइपे की ताई जू यिंग ने अपने नाम किया।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और हमारे दर्शकों को, मेरा मतलब है हमारे श्रोताओं को, इंतज़ार है आज रविवार के दिन होने वाली उस खास मुलाकात का। तो हम आपको बता दें कि बीते कुछ दशकों में हिंदी सिनेमा के पास एक ऐसा अभिनेता रहा जो एक साथ रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी में अपना दमखम दिखा चुका है। अक्षय कुमार के बारे में ये बातें कही जाती हैं और आज हम उन्हीं के साथ आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं। उनकी नई फिल्म हाउसफुल 3 पर्दे पर उतरी है और इसी मौके पर उनसे हमारी सहयोगी सुमरनप्रीत कौर ने बात की। आइए सुनिए ये बातचीत।
इमोशंस, एक्शंस, कॉमेडी और रोमांस की दुकान है अक्षय कुमार।
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
मैं तेरा हीरो, आ हीरो।
टुंग टुंग दा सॉन्ड कर दा।
तू चलंबा कद, दूजा सोनी भी तू हद।
टुंग दा शिकारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा।
हाउसफुल ऑफ टैलेंट अक्षय कुमार के साथ मैं हूं सुमिरन। अक्षय बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाउसफुल 3 में आप नजर आ रहे हैं अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाखरी और लीसा हिडन के साथ। इन 6 लोगों के स्टार कास्ट में आपका क्या रोल है?
मैं एक वॉनबी फुटबॉलर हूं और जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर फुटबॉल नहीं खेलता हूं, मैं वाटर बॉय हूं, मतलब प्लेयरों को वाटर देता हूं। लेकिन फुटबॉल का बहुत शौक है, बहुत शौक है। लेकिन मुझे मेरा कोच जो है वो चांस नहीं देता फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि वो रेसिस्ट है और वो मुझे बार बार इंडियन कह के बुलाता है, यू गेट आउट यू इंडियन, शट अप यू इंडियन, यू व्हाट विल यू प्ले यू इंडियन. सो ही इज जस्ट प्लेइंग दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर नाम प्लेइंग. एंड जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा मेरी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, सो दो पर्सनैलिटी एक्चुअली, और वो मेरी पर्सनैलिटी बिकॉज आई गेट सो मच ऑफ इंडियन मेरे दिमाग में एक ऐसा गुस्सा सा आ जाता है कि माई कैरेक्टर स्टार्ट्स चेंजिंग एंड दैट इज माई अदर कैरेक्टर. सैंडी से मैं सुंडी बन जाता हूँ बिकॉज ऑफ द वर्ड इंडियन. एंड देखिए बेसिकली ये एक मल्टीपल डिसऑर्डर जो है, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बट उसको हमने इस फिल्म के अंदर एक कॉमेडी के दायरा दिया हुआ है. सो जस्ट डोंट टेक इट टू सीरियसली, इट इज जस्ट अ फनी थिंग.
अक्षय, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साजिद फरहाद ने, इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा?
सबसे पहले तो वो बहुत अच्छे लिखते हैं, मुझे उनकी, उन्होंने सिंगम लिखी है, उन्होंने गोलमाल लिखी है, उन्होंने और बहुत सारी फिल्में लिखी हुई हैं, करीबन 12-15 फिल्में लिखी हुई हैं, जिसमें से करीबन 90-95% फिल्में उनकी हिट हैं. एंड दे आर वेरी गुड राइटर्स एंड आई वुड से उनका तरीका अलग स्क्रिप्ट के हिसाब से है. स्क्रिप्ट उनकी बहुत तेज़ भागती है क्योंकि उन्होंने खुद ने फिल्म लिखी हुई है, इसलिए वो अपने स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से जानते हैं और अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि हम बोलें जिस हिसाब से उन्होंने लिखी है. सो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि उन्होंने खुद लिखी हुई है. सो मैं समझता हूँ उनके लिए ये फिल्म बहुत आसान रही, लेकिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रही क्योंकि हमको उनके हिसाब से चलना है कि जिस हिसाब से उन्होंने लिखी हुई है. फ़र्क ज़्यादा नहीं है, जैसे उसी जॉनर पे हमने इसको स्ट्रेस रखा हुआ है और उसी जॉनर, अगर जिन जिन लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी लगी तो आई एम श्योर उनको ये भी पिक्चर अच्छी लगेगी बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम जॉनर.
फिल्म तो कॉमेडी है ही, हमने सुना है कि आपने बहुत सारी प्रैंक्स की फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्या ये सही है?
नो, वी डू वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ प्रैंक्स व्हिच इज नॉट, इट इज जस्ट फनी एंड इट शुडंट हर्ट द अदर पर्सन. प्रैंक्स लुक्स नाइस ओनली व्हेन यू डू इट व्हेन द पर्सन शुड नॉट गेट फिजिकली हर्ट और इवन मेंटली बॉदर्ड. इट शुड बी ऑन अ वेरी नाइस नोट एंड दैट मच यस वी हैव बीन डूइंग इट.
बस आज रात के लिए सर्दी तंदेसी है अदा सर्दित हो जानी बिता.
अक्षय, आपने रोमांटिक फिल्में की हैं, एक्शन फिल्में की हैं, पेट्रियाटिक फिल्में की हैं और कॉमेडी फिल्मों में भी आपने अपनी जगह बनाई है, आपका एक अपना ही स्टाइल है. एक्शन टफ लगता है या कॉमेडी आपको ज़्यादा चैलेंजिंग और लोगों को हंसाना ज़्यादा मुश्किल लगता है?
मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी फिल्में मैंने की है ये भी चैलेंजिंग. ट्रस्ट मी, आप एक दिन कैमरा ले लीजिए और पूरा सीन जो मैंने बोला है या जो रितेश ने बोला है किसी के साथ पूरा सीन कोशिश करिए और फिर वो कैमरे में जो आपने किया है और फिर किसी को दिखाइए और मुझे बताइए कि आपको वो बंदा हंस रहा है कि नहीं. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक पीपल लाफ, इट इज़ नॉट ईजी, ट्रस्ट मी. इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी अभी भी मैं सीख रहा हूँ ये कैसे ऑडियंस को हंसाएं. इतनी सारी ऑडियंस बैठती है, 350 रुपये की टिकट लेके बैठती है, 200 रुपये की टिकट लेके बैठती है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. अगर उनको मज़ा नहीं आया, नहीं आएगा. रोने में तो फिर भी आदमी रुला सकता है क्योंकि वो पोजीशनिंग ऐसी होती है, पिताजी मर गए, बहन को किसी ने पकड़ लिया है, कोई किडनैप हो गया, ये तो ये इसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आदमी को रोना मजबूर करते हैं. बट फॉर कॉमेडी इट इज़ नॉट ईजी. जैसे कि आप लोग देखते हैं इतना कॉमेडी शोज़ आते हैं, हर कॉमेडी शोज़ नहीं चल रहा है. क्यों? वो तो पूरी कोशिश करते रहते हैं सब लोग हंसाने की, लेकिन क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि लोग नहीं हंस रहे हैं.
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्शन से भी टफ है कॉमेडी?
मैं तो हर किस्म की, हर इमेज की फिल्म करता हूँ, हर जॉनर की फिल्म करता हूँ. मैं इसलिए साइड नहीं ले रहा हूँ सिर्फ कॉमेडी की. मैं तो कहूँगा एक्शन आसान है, कॉमेडी से ज़्यादा एक्शन आसान है. कि एक्शन में तो फिर भी आदमी को केबल वेबल बांध दो, ऊपर से छलांग लगा लो, ऊपर से गिर जाओ, ये कर लो, जैसे आप कूदोगे पीछे से आग का भवार आएगा, ये सब चीज़ें आसान है. अगर ये आप उस आग से भी डरते हो तो कोई बात नहीं, आप ग्रीन स्क्रीन पे कूद जाओ, उसके बाद पीछे आग लगा देंगे वो आपके. लेकिन कॉमेडी में कौन सा ग्रीन स्क्रीन लगाओगे? आपको ही हंसाना है, आपको ही जो कुछ करना है आपको डिलीवर करना है. तो ये एक ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर मैं घंटों घंटे बात कर सकता हूँ.
क्या देखकर फिल्में चुनते हैं?
जी अच्छी स्क्रिप्ट लगे मुझे, अच्छा डायरेक्टर में वो जोश लगे, राइटर में वो कमाल का एक अलग हिसाब का लगे, कुछ चीज कमाल की लगे, रियलिज्म हो चाहे वो और कोई भी जॉनर हो, एक अलग लगनी चाहिए ताकि जैसे कि मैं उस दिन का सोचता हूँ यहाँ तक वहाँ तक पहुँच जाता हूँ कि मुझे मीडिया के सामने बैठ के जब मैं बात करूँ तो वो भी इंटरेस्टेड हूँ, अरे हाँ ये तो नहीं कभी सोचा यार ये क्या, अरे ये तो अलग फिल्म। अभी मैं अगली फिल्म जो मेरी रुस्तम है वो नेवी पे है, वो क्या होता है कैसे होता है, इट्स कम्प्लीटली जब मैं बात करूँगा उसके ऊपर तो देन आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्रेस। मैं यही नहीं बोलूँगा नहीं बड़ी अच्छी फिल्म है वहाँ और मज़ा आएगा आप लोग देखिए, ये इतना नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए।
अच्छा अक्षय, आपने औरतों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस खोली हैं, ट्रेनिंग कैंप्स खोले हैं कराटे के, क्या मैं उसमें आ सकती हूँ?
हाँ प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज जस्ट गो देयर, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बी माय गेस्ट। आई हैव फिनिश्ड अबाउट 8,000 to 9,000 वुमेन ट्रेनिंग एंड आपको मैं गर्व से बोलता हूँ कि एक लड़की थी जिन्होंने अपना शी सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग रेप्ड एंड शी एक्चुअली हिट दैट गाय एंड शी रिएक्टेड टू इट सो वेल एंड दैट शी स्कॉट दैट गाय। आज वो मतलब उसको लेके गए हुए हैं, मतलब जेल में है वो, व्हाटएवर। सो लेडीज यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। गाइज यू हैव टू, इफ यू वॉन्ट आई मीन यू हैव टू पे फॉर इट।
तो जब तक मैं अक्षय से थोड़ा ढिशुम ढिशुम की ट्रेनिंग लेती हूँ, आप सुनिए ये गाना।
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को आखिर फिल्म में क्या पसंद आता है कि वो उसे हिट बना देती है?
सब चीज़ों पे उनको, दे लाइक सम गुड सिनेमास, दे लाइक समथिंग विच कैन एंटरटेन देम एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर मूड्स बाय द वे। बहुत सारे मूड, ऑडियंस का मूड भी होता है, पता नहीं क्या व्हाट। एंड ऑल्सो आई बिलीव फिल्म्स रन ऑन लक, मैं समझता हूँ लक इज वेरी 60-70% लक एंड 40% इज कंटेंट एंड हार्ड वर्क यू पुट इट। मैंने अपने कई फिल्में हैं देखा भी है कि प्रीमियर में सब लोग बोलते क्या काम किया यार, क्या फिल्म है, ये फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। फिर जब अगले दिन फ्राइडे सैटरडे होती है ये फिल्म को कोई चला नहीं सकता है। और मैंने खुद मतलब दो तीन बार तो एग्जांपल हो चुका है मेरे साथ कि पानी तक नहीं मांगी ये फिल्म और वो घाट घाट का पानी पी के आती है फिल्म। सो कुछ नहीं कह सकते, किसी के बाप में दम नहीं है ये बोल दे कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, ये किसी के बाप में दम नहीं है।
अक्षय, आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं और किस तरह का काम करना चाहते हैं आप आगे? अभी का प्लान क्या है और बाद का प्लान क्या है?
फिलहाल अभी तो रुस्तम ही है और एक रोबोटू। रुस्तम कुश्ती के ऊपर नहीं है, वो दारा सिंह जी की थी, उन्होंने खुद प्रोड्यूस डायरेक्ट खुद की थी। आई वुडंट से आई एम सैटिस्फाइड, आई एम ग्रीडी, आई वांट टू डू मोर एंड मोर वर्क एंड आई एम ग्रीडी एंड आई वांट टू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन माय हैंड व्हिच आई वांट टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग। 25 साल कर लिए, आई डोंट नो टिल व्हेन आई विल आई गो, मे बी अनदर 5 years, 7 years, 10 years, आई डोंट नो टिल व्हेन आई कीप ऑन गोइंग ऑन। एम से आई जस्ट होप दैट मैं अपना इतना काम करूँ इतना टिल दे हैव टू शूट मी डाउन, बस अब बर्दाश्त नहीं होता मरो। आई डोंट सी माई सेल्फ डायरेक्टिंग इट बट नेवर से नो, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन।
तो ये थे अक्षय कुमार जो बता रहे थे अपनी फिल्मी सफर के बारे में, हाउसफुल 3 के बारे में,
और उनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुमिरन प्रीत कौर। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगले हफ्ते हम आपकी एक और मुलाकात इसी तरह की कराएंगे, किसी और की बारी होगी उस दिन, लेकिन दिन भर में अब वक्त है मुख्य समाचारों का।
अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान कतर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक ईसाई दुकानदार की हत्या कर दी गई है। इससे कुछ ही घंटे पहले चटगांव के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या संदिग्ध चरमपंथियों ने कर दी थी। पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का अभियान छलावा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की मदद करने वाली स्वीडन की महिला को संत घोषित किया गया है। ये बीते 600 सालों में पहली बार है जब स्वीडन के किसी व्यक्ति को संत घोषित किया गया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। आपसे 1.5 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी घटना चक्र में। निखिल रंजन को दीजिए सभी साथियों संग अनुमति। नमस्कार।